नारद उवाच आत्मानं अरहयान् चक्रे धूप आलेप स्रगादिभिः साधु अलंकृत सर्वांगः महिष्याम् आदधे मनः। आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपसगादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपसर्गादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपसर्गादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। धूपालेपसर्गादिभिः महिष्यामादधे मनः। आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपसर्गादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। माता जी लोग नारद उवाच, नारद जी कहते हैं आत्मानम् अपने आप को अर्हयाम् मानो किया जाना हो, अपने को सजाया, चक्रे किया, धूप सुगंधित पदार्थों से, आलेप चंदन से शरीर को पोता, श्रक माला आदि से, आदि भी इत्यादि से, साधु अच्छे स्वभाव का सुंदर ढंग से अलंकृत सजा हुआ, सर्व अंग सारे शरीर पर महिष्याम रानी को आदधे ध्यान किया मनः मन से। आप लोग भी अनुवाद बोलेंगे। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा विश्रांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तात्पर्य पड़ता है, जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है जो दर्शन कथा भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर एवं भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं। इस प्रकार वह मन में ताजगी नवीनता का अनुभव करता है। जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, इस अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवत, भगवद् गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त साध्व अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी प्राण प्रिया रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावना मृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चीते ते करिया ऐक्य। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं तो या अपने मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधु शास्त्र तथा गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप समस्त वैष्णव जनों के चरणों में इस दास का सादर दंडवत प्रणाम। बड़ा सौभाग्य का विषय है, भगवान के बारे में, भागवत के बारे में, उनके दरबार में आप वैष्णवों के बीच कुछ भागवत चर्चा करने के लिए ऐसा शुभ क्षण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं एवं जिन वैष्णवों ने इस तरह का अवसर दिए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। प्रस्तुत विषय आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्रसंग से आप सब अवगत हैं। प्रसंग चल रहा है नारद जी और प्राचीन बरहिशत राजा के बीच। कथा वक्ता है नारद जी, श्रोता है प्राचीन बरहिशत राजा, और नारद जी एक रूपक के रूप में महाराज पुरंजन के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। आप सब पहले सुन चुके हैं कि पुरंजन घूमते घामते हिमालय के तराई में गया और उधर बड़ा सुंदर ही नौ द्वारों से परिपूर्ण सुंदर एक नगर मिला और वहाँ एक बड़ा सुंदर ज्योति मिली, जिससे वह मिला और दोनों में वार्तालाप हुआ, दोनों के मन मिलाप हुआ और पुनः एक साथ रहने लगे, विहार करने लगे। और उस विहार को करने में कैसे कैसे करता है इसका भी आप लोगों ने वर्णन सुना है, जिसका संक्षिप्त थोड़ा सा वर्णन करते हैं। वह रानी में इतना आसक्त हो गया कि उसकी दुर्दशा को वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं प्राचीन बरहिशत राजा से, एवं कर्म संसक्त कामात्मा वंचितो बुधः महिषी जरदधेत तत्त देवान्वर्तत। वह प्राचीन बरहिशत राजा से महाराज नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से कथा सुनना। वह पुरंजन नाम के राजा अपने रानी में एवं कर्म में इतना आसक्त हो गया कि जो जो रानी कहती थी वही वही वह करता था। क्वचित पिबंतम पिबती मदिरा मद बिहुवला। वह कभी जब मदिरा पीने लगती थी तो वह भी मद बिहवल होकर उसके साथ मदिरा पान करने लगता था। अस्नंत्यम क्वचित अस्नाति जक्षंत्यम सह जक्षति। जब वह कुछ चबाने लगती तो वह भी कुछ साथ में चबाने लगता, और यदि वह कुछ गाने लगता तो वह गाने भी लगता, यदि वह पूरा उसकी रानी गाने लगती तो वह भी साथ में गाने लगता, अपना वो भी तान पूरा लेता और वो भी अपना वीणा लेती, दोनों बैठकर आपस में गाने लगते। रुदत्यम रुदति क्वचित। और जब कभी किसी दुख से प्रभावित होकर वह रोने लगती तो वह भी रोने लगता। क्वचित धावती क्वचित हसंत्यम हसती जलपंत्यम अनुजलपति। यदि वह कभी कभी हंसने लगती किसी मनोभाव में आकर, संकल्प विकल्प करके, अच्छाई बुराई का अनुभव करके वह जब कभी कभी हंसने लगती तो वह भी हंसने लगता। कभी जब वह दौड़ने लगती तो वह भी दौड़ने लगता। जब वह चलते चलते या दौड़ते दौड़ते खड़ी हो जाती, रुक जाती, तो वह भी रुक जाता। अनुसेते शयानायाम अनवास्ते क्वचि दासती। यदि कभी कभी जब वह सो जाती तो उसके साथ वह सो जाता, जब वह बैठ जाती तो वह बैठ जाता। वो चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, ये सदैव लगेगा, अनु हमेशा लगेगा। क्वचित क्षिणोति श्रृणवंत्याम पश्यंत्या मन उपस्यति। यदि कभी कभी वह कुछ सुनने लगती तो वह भी सुनने लगता। जैसे आजकल देखा जाता है कि ईयरफोन से सुनते हैं तो एक अपने कान में डाल लेते हैं, एक उसके कान में डाल देते हैं, तो वो भी सुनती तो वो भी सुनने लगता। ऐसी प्रक्रिया उन लोगों की चलती रही। क्वचित सोचती क्वचित जिघ्रती जिघ्रंत्यम। कभी वो कुछ पुष्पों के या किसी पदार्थों का आघ्राण करती, सूंघने लगती, तो वो भी सूंघने लगता है। स्पृशंत्यम स्पृशति क्वचित। यदि किसी दृश्य वस्तु या पदार्थ का स्पर्श वह करती तो वह भी स्पर्श करने लगता। क्वचित सोचती जाया क्वचित सोचतिम जायमानम सोचती दीनवत। कभी कभी वह जब सोचने लगती किसी विशेष परिस्थिति में आकर शोकाकुल हो जाती तो वह भी उसी के समान सोचने लगता दीन होकर। अनुहृष्यति हृष्यंत्यम, यदि वह कभी प्रसन्न होती तो वह भी उसके साथ प्रसन्न होता। मुदिताम अनुमोदते, जब उसकी रानी प्रसन्न होती, हृष्ट पुष्ट होती, हर्षित होती, आनंद व्यक्त करती, तो वह भी पीछे से आनंद व्यक्त करने लगता। विप्रलब्धो महिषैवम सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन् अनुकरोत्यज्ञः क्लैव्यात् क्रीडा मृगो यथा। कह रहे हैं कि वह इस प्रकार से महिष्या एवं विप्रलब्धः, वह अपने सर्वांग रानी के द्वारा राजा पूर्णतः फंसा लिया गया था और उसके द्वारा ठगा जा रहा था, और सर्व प्रकृति वंचित और जितने उसके परिकर थे उन लोगों के द्वारा भी वह ठगा जा रहा था। न इच्छन, कभी कभी उसको दुख की भी अनुभूति होती थी, वो नहीं चाहता था कि मैं वैसा करूं। न इच्छन अनुकरोत्यज्ञ, लेकिन वह मूर्ख अज्ञ राजा न चाहते हुए भी वैसा ही करता था। कैसा करता था, क्यों करता था, तो कह रहे क्लैव्यात, वो बलात् किया जाता था बलपूर्वक। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं नारद जी की, क्रीड़ा मृगो जथा, जैसे बंदर को नचाने वाला हाथ में लठिया लेकर, बंदर नहीं चाहता है फिर भी वो लठिया के बल से, अपने इशारा के बल से बंदर को नचाता है। बंदर को कहता है कि हाँ भाई थोड़ा नाच दिखा देना, तो नाच कर दिखाता है। कहता है कि थोड़ा ससुराल में कैसे लोग जाते हैं सज धज कर अटैची लेकर, तो वो भी दिखाता है। जब कहते हैं कि ससुराल में जाकर कैसे बैठते हैं, वो भी दिखाता है। ससुराल में बैठकर कैसे रूसते हैं, वो भी दिखाता है। अच्छा ये बतलाओ, पति पत्नी में मारपीट कैसे होता है, तो वो भी दिखाता है। ये बचपन में हम लोगों ने गांव में खेला देखे हुए हैं, शायद आप लोग भी देखे होंगे, तनभूत कर लेना, क्योंकि यही उदाहरण दिए हैं। तो जैसे मरकट को नचाने वाला लठिया के बल से सब कुछ कर देता है और बंदर न चाहते हुए भी करता है, उसी तरह पुरंजन राजा अपने रानी के वशीभूत होकर एवं अपने परिकरों के वशीभूत होकर वे लोग जो जो चाहते थे उन सारे कर्मों को करता था। उसको एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। किंतु एक दिन क्या हुआ कि वह जंगल में चला गया शिकार करने के लिए, और अपने रानी से नहीं पूछा और उसका ध्यान भी नहीं किया, और बड़े ही सुंदर रथ पर सवार हुआ, अपने सोने के आभूषणों को धारण किया, सोने के कवच को धारण किया, और बड़ा ही सुंदर विशाल धनुष को हाथ में धारण किया, और बड़े उत्साह के साथ वह वन में चला गया। एकादश सेनापतियों के नायक से समन्वित होकर वह जंगल में चला गया और शिकार खेलने के लिए वो तत्पर हो गया। चचार मृगयाम तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः, वह शिकार करने के लिए अपने हाथ में खूब सुंदर धनुष बाण धारण किया हुआ है, और उतना ही नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि विहाय जायाम अतदरहम, जिसको छोड़ना अत्यंत ही उसके लिए कठिन काम था, उस रानी को भी उस दिन छोड़ दिया। प्रश्न उठा कि क्यों छोड़ दिया, तो कह रहे हैं मृग व्यसन लालसह, उसको शिकार खेलने की बहुत भारी लालसा उस दिन जागृत हो पाई थी, इसलिए उसने छोड़ दिया। और शिकार खेलने में इतना आसुरी स्वभाव का हो गया कि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि आसुरी मृत्यु माश्रित्य घोर आत्मा निरनुग्रह, वह आसुरी स्वभाव का हो गया, और उस आसुरी वृत्ति को स्वीकार करके घोर आत्मा हो गया, उसके मन में कोई दया नाम के चिन्ह नहीं रहा, और अपने बाणों से, तीखे तीखे बाणों से अनेक प्रकार के वन पशुओं को मार डाला, जिसको देखकर वहां रहने वाले व्यक्तियों के हृदय में असह्य दुख की पीड़ा की अनुभूति होने लगी, ऐसा वर्णन करते हैं। इसके पश्चात उसके बाणों से बहुत सारे पशु मारे गए। कौन कौन मारे गए उसका भी नाम रखते हैं, कह रहे हैं कि खरगोश, सुअर, लीलगाय, भैंसे, कृष्ण मृग, साहिल, अन्य और भी मेध्य पशु मारे गए। और इनको मारते मारते और शिकार करते करते, आखेट करते करते विनिघ्नन श्रम मध्यगात वह बहुत थक गया और उसके कारण उसको भूख लगी, प्यास लग गई और इसके कारण से उसका शरीर पूर्णतः शिथिल हो गया। तब वह ततः निवृत्तो गृहम एवान, वहां से निवृत्त होकर घर आ गया। जब घर पर आया तो कृत स्नानोचिताहार संविवेश गतक्लमः, वह स्नान किया उचित ढंग से, इसके बाद में उचित ढंग से भोजन किया, तत्पश्चात विवेश वह कुछ विश्राम किया, सेनागार में जाके शयन किया, गतक्लमः वह शांति विश्रांति का अनुभव किया। इसके बाद आत्मान मरहयान चक्रे धूपा लेप सगादेहि साध अलंकृत सर्वांगो महिष्या मादधि मनः, तब उसने अपने को अनेकों प्रकार से सजाया, चंदन से, मालाओं से, पुष्पों से, कहीं कुछ कान पर रख लिया, कहीं कुछ पॉकेट में रख लिया, कहीं गले में माला लगा लिया, कुछ मुकुट पहन लिया, हर तरह से अपने को उसने सजा लिया। आत्मानम अर्हयान चक्रे, किससे आत्मा को सजाया, अपने को किससे सजाया, तो कह रहे धूप आलेप श्रगादिधि, धूप से, आलेप से, चंदन आदि से, सुंदर मालाओं से खूब सुंदर सजाया। साधु अलंकृत सर्वांग, अपने समस्त अंगों को, अंग प्रत्यंग सबको सजाया। जैसे आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत सजाते हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग सजाते हैं। जब घर से निकलते हैं, ऑफिस में जाना होता है तो कोई इधर छिड़क लेते हैं, कोई इधर छिड़क लेते हैं, कुछ इधर खोस लेते हैं, कुछ इधर लटका लेते हैं, टाई वगैरह सज धज के चलते हैं। तो उसी तरह वो अभी जब सज धज के तैयार हो गया तो बड़ा ढंग से अब ध्यान किया कि भाई मैं अकेले अच्छा नहीं लग रहा हूं, अब घर वाली भी होनी चाहिए। तो यहां बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है। जैसे गृहस्थों को चेतना जगती है तो उत्तम से उत्तम विषय भोग करने की प्रक्रिया चालू होती है, इससे उनकी उत्तम चेतना नहीं होती है। किंतु जब अध्यात्म जगत में जुड़ते हैं, किसी सौभाग्यशाली को ऐसा सुअवसर मिलता है, संसार से निर्भेद होता है, तब वह साधु पुरुष के शरण में जाकर उनके कथोपकथन को सुनकर सजाता है अपने को। और वह सजाना है कि साधु पुरुषों के मुख से भगवान के संबंध में शास्त्रोक्त वचनों का श्रवण करें, इससे अपने को अध्यात्म जगत में सजाया जाता है। जैसे उसने संसार में अनेक प्रकार के उपकरणों से सजाया, प्रभुपाद जी के आशय यही है। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता है। और वह आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त होता है तो इस पर प्रभुपाद जी ने श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की उक्ति का उदाहरण दिया है अपने तात्पर्य में। वे कहते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि गुरु वाक्य गुरु गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया आई के आर ना करिह मोने आशा, श्री गुरुदेव के मुखार बिंद से कहे हुए वचनों के प्रति जीव को अर्थात शिष्य को आकर्षित होना चाहिए। उनको प्राण के समान अपना धन मानना चाहिए, अपना आभूषण मानना चाहिए, अपने जीवन के सर्वस्व मानना चाहिए। अगर यदि ऐसा करता है तो वह अध्यात्म जगत में अपने को सोना से, स्वर्ण से, मणि से, मूंगे से, पनों से, जवाहरों से, अनेक प्रकार के पुष्प कुष्म आदि आभूषणों से सजा रहा है। कुछ बाकी नहीं रह गए, नहीं कि अलग से कुछ इतर छिड़क लें, कुछ माला पहन लें, कुछ और कुछ कर लें, कपड़ा पर बहुत सारे प्रेस कर लें या रेशमी वस्त्र धारण कर लें तब हम सुंदर लगेंगे, ये बात नहीं। जीव अध्यात्म जगत में कैसे अलंकृत हो सकता है, सुसज्जित हो सकता है, मंडित हो सकता है, तो इसको बतला रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया आई के आर ना करी है मने आशा। इससे जीव सुशोभित होता है, यह है सजाने की प्रक्रिया। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारे लिए तो गुरु के द्वारा जो कहा गया है वाक्य, जो मंत्र दिया गया है, वही हमारे लिए सब कुछ है, उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं जानता हूं। हमको ये बात कहने में याद आ गई, पूज्यपाद भैया श्री भी कहते थे कि वास्तव में हमको जीवन में महाराज जी के आज्ञा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं अच्छा लगता है। ये हमसे कई बार वो इस बात को कहे थे, एक बार नहीं बिसनों बार कहे। जब भी मैं इस बात को याद करता हूं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसा कहते हैं तो उनकी बात मुझे याद आ जाती है और कहे बिना मैं नहीं रुक पाता। तो गुरु के द्वारा जो कहा गया है शिष्य के लिए सबसे सुंदर वही आभूषण है जिससे हम सजा सकते हैं अपने को। एक बात और कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य। साधु शास्त्र, साधु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, विद्वान, चतुर। साधु माने उत्तम कोटि का व्यक्ति, भगवान का भक्त। और साधु का अर्थ अच्छा भी होता है। तो साधु और शास्त्र, साधु शास्त्र एक साथ करते हैं तो साधु सुंदर शास्त्र, जो भगवान के संबंध में जो भगवत प्रतिपादन करने वाला है उस शास्त्र का, और गुरु वाक्य, और उस गुरु के वाक्य को जो श्री भगवान के बारे में साधु वाक्य बतलाते हैं, ऐसे गुरुजनों के वाक्यों को सुनना चाहिए और अपने को सजाना चाहिए, मुख्य यही बात है। ऐसे तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन सभी शास्त्रों को नहीं, लेकिन साधु शास्त्र और साधु गुरु, ये दोनों में जुड़ेगा। नहीं तो अलग अलग अगर योग विभाग करके इसका अर्थ करेंगे तो साधु एक, शास्त्र दो, गुरु तीन, और वाक्य चार। लेकिन वाक्य बद्ध करेंगे जब इसको तो साधु शास्त्र एक और साधु गुरु वाक्य दो, दो ही वाक्य हुए। तो साधु शास्त्रों में और साधु गुरु वाक्यों में ही शिष्य को सजाने के लिए सर्वोपरि आभूषण कहा गया है। इसलिए प्रत्येक साधक का काम है कि वह सजाएं। कैसे सजाएंगे? तो भगवान के नाम गुण लीलाओं को गाने में। वे लोग क्या करते हैं तो यहां करें कथनों पर कथन करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जिनके प्राण इंद्रिय मुझ में लगे हुए हैं, बाहरी चेतना और भीतरी प्राण दोनों जिनके मुझ में लगे हुए हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं तो कह रहे हैं कि बोधयंत परस्परम। वे आपस में एक कोई बोलता है दूसरा सुनता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं बैठकर सुन रहा था, कोई और वक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो इसको परस्पर बोधयंत परस्परम कहते हैं। कोई भक्त बोलते हैं, कोई भक्त सुनते हैं। तो ऐसे जिनके मन बुद्धि इंद्रिय मुझ में लगे हुए हैं वो हमारे बारे में ही बोलते हैं, सुनते हैं, कथ्यंत च वो कहते हैं, और कथ्यंत च माम नित्यम वो मुझ मेरे बारे में नित्य ही बोलते हैं, कहते हैं, और उससे क्या होता है तो कहते हैं तुष्यंति, बहुत हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और उससे रमन्ति, रमण करते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही बस सुन लिया और निकल गया, उसमें डूब जाते हैं, रमन्ति, रमण करते हैं। यह है। और ऐसा कब होता है? भक्तों में ही होता है। ददाति प्रति गृहणाति के काम भक्तों के ही बीच होता है। इससे आंतरिक आत्मिक सुख होता है, इससे जीव प्रसन्न होता है, इससे प्रत्येक जीव प्रसन्न होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर केवल आदान और प्रदान की बात कह दिया जाए तो आदान प्रदान तो संसार में भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ आदान और प्रदान की बात जो कही जा रही है भक्त तो भगवान के संबंध में और भक्त और भक्तों के बीच के ही बात कही जा रही है। भगवान के बारे में भक्त जन भक्तों के बीच में जो चर्चा करते हैं उस आदान और प्रदान की बात करें, और इससे आत्मिक सुख होता है। ददाति भगवान की कथा को देते हैं और प्रतिग्रहणाति भगवान की कथा को सुनते हैं, इससे दोनों को सुख मिलता है, कहने वाले को भी सुनने वाले को। इससे सजाते हैं, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और सदगुरुओं से वैष्णव जनों से आत्म स्वरूप के बारे में जानो और अपना कर्तव्य पालन करो। यह है सजाना। यदि ऐसा करते हैं तो वाकई में यही सजाना सजाना हुआ, दूसरा नहीं है। और यह मिलता है केवल भक्तों के सानिध्य से, भक्तों के संग से। ये नहीं कि जहां तहां कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ही हमको पदार्थ मिलेगा। जादृशो जस्य संसर्ग हो, जिसका जैसा संसर्ग होगा वैसे ही भवे तद गुण दोष भाग, वैसे ही उसमें दोष और गुण की उत्पत्ति होगी। क्योंकि कहा गया है कि जैसे अयस्कांत मणि, वह एक मणि है, उसके संपर्क में जाने से एक साधारण लोहा में भी आकर्षणत्व शक्ति प्राप्त हो जाता है। जैसे चुंबक के पास कोई साधारण भी लोहा रख दिया जाए तो उस लोहा में भी वह चुंबकत्व शक्ति आ जाती है और वह भी आकर्षित करता है। उसी तरह जैसा हम संग करेंगे वैसा ही उसका गुण, उसका दोष, उसका प्रभाव हमारे अंदर आएगा, ऐसा वर्णन किया गया है सब शास्त्रों में। इसलिए हमको अच्छा संग करना चाहिए, साधुओं का ही संग करना चाहिए। सद्भी रेव सहा सीत, साधुओं के साथ में ही बैठना चाहिए। सद्भी रेव कुर्वित सदगतिम संगतिम, साधुओं के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवाद मैत्रिन च, साधुओं के साथ ही, भक्तों के साथ ही वाद विवाद और मैत्री भी करनी चाहिए। अगर लड़ना भी है तो साधुओं से ही लड़ लो, बहस भी करना है तो साधुओं से ही कर लो, लेकिन बैर नहीं। वाद विवाद की बात कही जा रही है, प्रश्नों पर प्रश्न कथोपकथन किया जा रहा है। यहाँ बैर विरोध की बात नहीं की जा रही है। सद्भीर विवादम मैत्रिं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत, किंतु जो असत पुरुष हैं उनके साथ कभी भूल कर भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके संसर्ग से दोष आने की संभावना है। असम संसर्गा दोषेण कौन आति रसातलम, असत पुरुषों के सत्संग से कौन नहीं रसातल में गया, किसकी नहीं औन्नति हुई। पाई कुसंगति कौन नसाई, कुसंगत पाकर कौन नहीं गर्त में गया। अनेकों प्रमाण है लेकिन टाइम नहीं है कि हम उसको दे सकेंगे। इसलिए सद भक्तों का ही साथ करने के लिए यहां बात कही जा रही है। अतः हम सबको ध्यान से इस पर मनन करना चाहिए। और ऐसे भक्तों से, ऐसे सत्संगों से क्या होता है तो उसका वर्णन करते हैं। वे सतपुरुष क्या करते हैं, वैष्णव जन क्या करते हैं, पापा निवारयति यो यते हिताय, वो पापों से दूर करते हैं और हित में लगाते हैं, हित वाले जो काम हैं उसमें लगाते हैं। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोती और गुह्य से गुह्य बातों को बतलाते हैं और गुह्य से गुह्य बातों को पूछ लेते हैं और गुणों को प्रकट करते हैं, जो अपने अंदर छिपे हुए हैं उसको भी उभार देते हैं। तुम इस बात को समझो, अपने को समझो, अपने कर्तव्य को समझो और इस काम में लगो। ऐसा सतपुरुष ही करते हैं, गुरुजन ही करते हैं, वरिष्ठ वैष्णव जन ही करते हैं, जिनकी चेतना उत्कृष्ट है ऐसे लोग ही करते हैं। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले। कह रहे हैं कि अगर किसी कारण बस, किसी दुर्वासना बस अगर दुर्गति में भी चले गए तो वे लोग निकालते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि काला कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे और भटमारियों के चक्कर में फंस गए थे, लेकिन भगवान ने कृपा करके अपने जन को वहां से निकाल लिए। तो इसको कहते हैं आपद गतम च न जहाती, वे छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि वो विपत्ति में फंस गया तो उसको वहीं छोड़ दो अपने मस्ती मारो, वे वहां से उसको पकड़ कर निकालते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से वह निकल जाए निकाल कर छोड़ते हैं। आपद गतम च न जहाती ददाति काले सत्संगति कथय किम न करोति पुंसम। भला बतलाइए ऐसे सतपुरुषों के, भक्तों के सत्संगति क्या नहीं कर देती है, इससे बढ़कर दूसरा संसार में कोई है ही नहीं उद्धार करने वाला, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हमको जमकर श्री गुरु चरणाश्रित रहना चाहिए। गुरु चरणाम्बुज के आश्रय में रहेंगे तो हम सहज में ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए हमको अलग से कुछ आयास करने की जरूरत नहीं है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त, संसार के भय से शीघ्रातिशीघ्र हम मुक्त हो जाएंगे। कोई भी जीव हो सकता है। कह रहे हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, जो गुरु चरण के आश्रय में ही रहते हैं, गुरु चरण के आश्रय के अतिरिक्त तो उनका दूसरा कोई है ही नहीं। वही श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया या के आर ना करिय मन आशा की ही बात कह रहे हैं। वो चाहे लोक भाषा में कहो चाहे देव भाषा में, को बात एक ही है। तो कह रहे हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, जो श्री गुरु चरण के वचनानुसार जीवन निर्वाह करने का आश्रय ले लिया है, व्रत ले लिया है, तो संसारात अचिरात भव मुक्त, वो संसार से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सेन्द्रिय मानस नियमा देव, यदि ऐसा वो कर लिया तो क्या होता है, मुक्त तो हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात नीचे वाले पंक्ति में कह रहे हैं कि द्रक्षसि निज हृदय स्थम देवम। वो अपने हृदय में ही देवम श्री कृष्ण का दर्शन करता है। देवम का अर्थ सुन रहे थे ना, श्रीमान वृंदावन चंद्र दास जी बोल रहे थे, हे देव हे दैत हे भुनई के बंधु में जब नव संबोधन किए गए हैं, तो देव माने कृष्ण, देव माने इंद्र वरुण कुबेर आदि की बात यहां नहीं कही जा रही है, देव माने श्री कृष्ण। तो उस देवम श्री कृष्णम को हृदय में ही हम देख सकते हैं और बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये नहीं कि हमको वन में जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। यहाँ केवल एक मात्र कह रहे हैं कि गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देव। ऐसा अगर नियमात एवं नियम से अगर करता है, श्री गुरु चरण आश्रित में रहकर भजन करता है, कीर्तन करता है, साधन करता है, तो द्रक्षसि निज हृदय स्थम देवम, अपने ही अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करता है। यह साधु शास्त्र गुरु वाक्य का अर्थ है और ऐसा करने से ही हम अपने को सजाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि हम चाहे ऊपर से कुछ भी कर लें, हम अपने को सजा नहीं रहे हैं बल्कि हम अपने को धोखा ही दे रहे हैं। हम चाहे समाज को जितना भी ठग लें, भगवान को नहीं ठग सकते हैं, गुरु को नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम सभी साधक हैं, हम सभी साधकों को अपने को सजाना चाहिए, जैसे महाराज पुरंजन अपने को सजाकर अपने पत्नी प्राण प्रिया रानी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी समस्त अलंकरणों से, उपकरणों से, आभूषणों से सजा में, वो क्या सजाना है तो कह रहे हैं टीका तो बड़ी सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं। और वंशधर जी भी बड़ा सुंदर टीका लिखे हैं कि ज्ञान वैराग दान तपस्या योग ये सब आभूषण है साधक के लिए। दान से, तप से, जो हमारे लिए गुरुजनों के द्वारा मंत्र उपदेश किए गए हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही उसका ठीक से जप करना, उस ठीक से चार नियमों का पालन करना, ठीक समय पर जगना, ठीक समय से मंगला आरती करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, श्रृंगार आदि, गुरु पूजा आदि, अनेक प्रकार के जो हमारे लिए साधन प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं, उनको ठीक से पालन करना, यही आभूषण है। इन्हीं से अपने को सजाना है। यदि हम आप को सजाना चाहते हैं, अपने को सजाना चाहते हैं, तो इन्हीं वाक्यों को हमें जीवन में स्मरण रखना चाहिए और इसी से हम अपने को सजा सकते हैं, न कि सुंदर आभूषणों से। ये तो बाह्य उपकरण है, बाह्य उपकरणों से आंतरिक सुख किसी को हुआ है न हो सकता है। इसलिए साधु शास्त्र गुरु वाक्य चीते थे करिया आय आर ना करी हो मुने आशा, यही तात्पर्य का भाव है। और टीका का भी यही भाव है कि साधक को अपने को कैसे सजाना है, तो यही सजाने की विधि है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और श्री रामाकांत प्रभु को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमसे 3 साल से कह रहे थे और मैं आना कानी कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं। बाद में इस बार भी मैं टालने के मूड में था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, भैया कई बार कहे टाला बड़ा भारी नुकसान हुआ, अब हम किसी वैष्णव के बात को नहीं टालेंगे, इस बार तो कह ही देंगे। तो इनकी कृपा से आज मुझे इस तरह का भगवान के गुण वर्णन करने का अवसर मिला, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे धर्मात्मा प्रभु हैं, उनको भी मैं अन्य समस्त वैष्णव जनों के आभार प्रकट करता हूँ, सादर नमन वंदन करता हूँ। कुछ त्रुटि हो गई होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय श्री प्रभुपाल, हरे कृष्ण। इस संबंध में यदि प्रश्न हो तो हमारा टाइम अभी बाकी है। आप आगे आ जाइए। आपको चाहिए श्लोक, चाहिए श्लोक मिल जाएंगे। भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं इस बात को, और यह मोह मुदगर में है। मोह पर जो मुंगरा चलाते हैं उसको मोह मुदगर कहते हैं। इस श्लोक को मैं 20-25 साल पहले श्री गुरुदेव के मुख से सुना था, बाघी गांव में। उस समय हम थे, भैया थे वृंदावन चंदा जी, श्याम सुंदर जी, गांव में प्रीचिंग करते थे श्री गुरुदेव, तो इस पर बोलते थे, बहुत बढ़िया से व्याख्या किए थे महाराज श्री। तो हमने जो कुछ बोला गुरु चरणों के आश्रय से बोला। हाँ तो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, हमारे पास है। और कोई किसी भी आशाओं को भगवान से जोड़ दीजिए और भक्ति कीजिए, उसी से पूरा होगी, क्योंकि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भगवान पूर्ण है। ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम कहा गया है उनको, तो वो पूर्ण है। तो चाहे आपको सांसारिक कामना हो या चाहे आध्यात्मिक कामना हो, इन समस्त कामनाओं के साथ युक्त होकर तीव्र भक्ति के साथ आप उनके भक्ति को कीजिए, आपके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भगवान करेंगे। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान के यजन करने के लिए ही भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद के दूसरा अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के देवताओं को, लेकिन अंत में सार बात कह रहे हैं। जैसे समाचार होता है बाद में कहते हैं मुख्य बात पुनः एक बार, तो सार बात में कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। वो चाहे सकाम भाव से करो चाहे निष्काम भाव से करो, भोग रत होकर करो चाहे जोग रत होकर करो, लेकिन श्री कृष्ण के ही तीव्र भक्ति जोग में आश्रित होकर करो, सारा पूरा हो जाएंगे। यही विधि है, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान ऐसा ही बतलाते हैं। ठीक है, और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय।